सभी जरा नजदीक बैठे।
As divine as
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवत्सादि गौर भक्त श्री श्री राधा कृष्ण राधा कुंड गिरी गोवर्धन की ब्रज वृंदावन की जय धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय देवी की जय महाराणी की जय समावेत भक्त वृंद की जय गौरव प्रेमानंद क्योंकि ज्यादातर हम लोग भगवान के दिव्य स्वरूप को पहचानते नहीं, इसीलिए पहले दिव्य शक्तियों को प्रकट करते हैं। भौतिक सृष्टि यानी कि ये पृथ्वी इत्यादि सब कुछ की उत्पत्ति दिव्य रूप से हुई, लेकिन इसमें पदार्थ जो पैदा हो रहे हैं इस पर हम लोग बहुत आसक्त रहते हैं। आसक्त होना यानी कि हमें फल की इच्छा से वो पदार्थ पाने के लिए भगवान की शक्ति कर्म द्वारा उपयोग करते हैं, अपना करें ही नहीं कुछ। लेकिन ये जो भगवान की शक्ति द्वारा सब कुछ पैदा होगा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और उस तत्वों का ही शरीर हमने प्राप्त किया है, यानी कि भौतिक पदार्थ में ऐसे फंसे हैं तो ठीक, लेकिन उस पर ज्यादा आसक्ति भी रखी। यदि हम जेल खाने में जाए और जेल को पसंद करने लगते हैं, जेल खाने में कोई जाता है तो सजा के लिए जाता है, लेकिन सजा में हमारी आदत ऐसी बन जाती है कि जहां है हम अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से रखना चाहते हैं, यानी कि वहां भी हम सुख की भावना हैं। जेल खाने में तो सुख होता है, सजा के लिए जो आया है तो सजा में तो दुखी होता है, सुख कहां हो। गलती करते हैं तो गलती की सजा होती है, सजा के लिए जेल खाने में जाना पड़ता है और फिर भी सुख की अपेक्षा करना ये भ्रमण है, इतनी मूर्खता कहीं नहीं देखी। तो भौतिक संसार ऐसा विचित्र संसार जो हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की दिव्य शक्ति से पैदा हुआ, लेकिन इस संसार द्वारा हम तक समझ सकते हैं, समझने की भावना यदि रखें तो ज्ञान भी आ सकता है, और ज्ञान द्वारा हम अनुभव भी हो सकता है कि हमारी सत्य क्या है, हमारा ही सत्य क्या है, हम कौन है क्या है। तो जब हम एक दूसरे के स्वरूप को देखते हैं, हाँ देखो उसका नाक बहुत ऊंचा है, हाँ एक चीनी जैसा नाक है तुम्हारा, चाइना वाले के नाक बहुत चिपके होते हैं, हाँ तो एक ये सारा जो रूप होता है जिस पर हम काफी लगाव रखते, तो वो भ्रमण भगवान के रूप के साथ हम कभी नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के रूप को हमारे जैसा रूप होते हुए हम अपने आप में एक मान लेते हैं। भगवान का रूप हमारे जैसा लग रहा है, देखो दो हाथ है, नाक है, कान है, थोड़ा हम उसे ज्यादा सुंदर है, एक रूप ऐसा बनाया कलाकार ने, यूं भी कहेंगे ये कहेंगे वो कहेंगे, लेकिन ये रूप की असली पहचान कराने के लिए भगवान दिव्यता का उपयोग करते हैं। दसवें अध्याय में अर्जुन भगवान की दिव्यता की पहचान करता है, लेकिन इस भूमि पर इस धरती पर दिव्यता का परिचय कैसे। तो भगवान कहते हैं देख जल में स्वाद में जल में स्वाद में हूं, मनुष्य तकात में हूं, पांडवों में धनंजय में हूं, और शस्त्रधारी में रामचंद्र में हूं, सारे अदिति के बेटों में मैं विष्णु हूं, लेकिन हमें परिचय नहीं। आप कभी पानी पीते भगवान को याद करते थे, देखो ये जल में स्वाद भगवान ने भगवान को चखा, ऐसा एक अनुभव होता है, ऐसी ऐसी बुद्धि रख सकते हैं क्या, कितनी देर यदि रखते हैं पानी पीते हैं तो भगवान कहते हैं जल में स्वाद में शायद फिजी बोतल में अच्छा स्वाद होगा, है इंडिया के बोतल में क्या स्वाद होता ही नहीं, इतना पॉल्यूशन होता है, तो बालों बाल पीए तो फिर बीमार हो। कहने का मतलब है कि इसमें दिव्यता छुपी है, न तो हम पहचानने के लिए समर्थ हैं। तो भगवान ने तो अपने आप का वर्णन कर दिया, अपनी दिव्यताओं का काफी वर्णन कर दिया, लेकिन अर्जुन की इच्छा ये रही थी कि भगवान आप कि ये सारी दिव्यता एक स्थल पर एक व्यक्तित्व पर कैसे पहचान। तो भगवान कहते हैं अरे वो भी हो सकता है कि तू तेरी आंखों से नहीं देख पा रहे, तुझे दिव्य आंख देनी पड़े, जब तेरी इच्छा है तो मैं दे देता हूं, तो देख एक ही स्थल पर सारी दिव्यता का परिचय कर। तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, विराट रूप में सारी सृष्टि समझ, सारे देवता लोग समझ, और ये विराट रूप में सब कुछ बताया। भगवान का ऐसा मिथ्यारोपण कोई नहीं कर सकता, जो अपने आप को भगवान कहता है वो तो अपना विराट रूप भी नहीं बता सकता, तो जो को भगवान कहता है या जिसको हम मनुष्य को भगवान मानते हैं तो उसको देखना कभी उसने विराट रूप दिखाया है। भाषा का वो भगवान नहीं हो सकता। कृष्ण भगवान यहां अपना विराट रूप दिखाते हैं और विराट रूप हाँ उस समय यानी कि युद्ध के स्थल पर सारे सृष्टि का विनाश करने यानी सारे राजाओं का विनाश करने के लिए उपस्थित हुआ। तो विराट रूप में पूछता है भगवान आप कौन? तो भगवान क्या कहते अरे कालो हम अस्मी मैं काल के रूप में खड़ा और सारे ये जगत के जो जो योद्धा लोग आए हैं उसका सर्वनाश करने के लिए आए। तो हजार हाथ वाले हजार मुख वाले ऐसे विराट रूप का दर्शन करके अर्जुन के छक्के छूट जाते हैं। अर्जुन कहते हैं भगवान मुझे रोमांच हो रहा है, मुझे कंप हो रहा है, मुझे तो काफी घबराहट हो रही है, आपने ये क्या बताया? ये सहस्त्र मत्थे वाले सहस्त्र भुजा पर विराट रूप के साथ अर्जुन कोई विस्मत नहीं रखता। भगवान काल के रूप में सर्वनाश बन रहा है और अर्जुन देखता है कि उसके सारे शत्रु वाले भगवान के रूप में चले जाते हैं यानी कि वहां भगवान के अंदर समा जाता है। ऐसा विकराल रूप अर्जुन के साथ कोई विस्मृत नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कि मुझे घबराहट हो रही है। ऐसे रूप ऐसा भगवान का रूप यदि हमारे सामने आए काल रूप में तो सबके छक्के छूट जाते हैं, इनके साथ हम कोई संबंध नहीं रखते। शरीर का नाश होता है तो शरीर का नाश भगवान की शक्ति द्वारा होता है, तो शायद विराट रूप में भी शक्ति प्रकट हो हाँ? लेकिन भयानकता आत्मा को शांति कहां देगी? ऐसी भयानक परिस्थिति हमें बार बार घबराहट पैदा करती है, हम लोग घबराते रहते हैं। कोई भी चीज हमारे सुख के लिए नहीं बल्कि दुख के लिए होती है तो हम घबरा जाते हैं। हम चाहते हैं सुख लेकिन मिलता है दुख तो घबराहट होती है कि हमारा क्या है। जब फिजी में कुंभ हुआ था तो सबके दिल में घबराहट थी कि नहीं पता नहीं क्या होगा। लेकिन आप देखिए कि भौतिकता हमारा मूल रूप नहीं है, तो भगवान यदि अपना भौतिक रूप दिखाते हैं और नाश के लिए उपस्थित होते हैं युद्ध के समय तो इसमें घबराने की आवश्यकता क्या है? जबकि हम ये शरीर ही नहीं हम आत्मा होती है, तो जब भक्त हृदय होता है तो भक्त हृदय भगवान के ऐसे रूप पर ध्यान नहीं देता, ऐसे रूप पर ध्यान नहीं देता। सृष्टि के संचालक के रूप में भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में जी आते हैं, पर भगवान के ये कार्य में हम कोई ऐसे आकलन नहीं कर सकते। अब देखोगे अर्जुन ने घबराहट में सारी घबराहट कर दी कि भगवान आपकी ये दिव्यता भयानक, मैं ये नाश देख रहा हूं लेकिन इसके लिए आप उपस्थित हो तो मुझे भी माफ कर दे क्योंकि मैंने भी काफी आपके साथ गलती की, मैंने आपको मित्र समझकर आपके साथ हंसी मजाक भी की, मुझे मालूम नहीं कि क्या आप पुत्र एक पुत्र दूसरे पुत्र की गलती आपको माफ करता है, आप कृपा करके मुझे माफ कर। हम घबराहट के समय में अपनी गलतियां स्वीकार करते और जो भी स्वीकार करते, लेकिन वो घबराहट में वो भगवान के लिए विष्णु के साथ कोई संबंध नहीं रखता। माफी मांग लेता है कि भगवान की दिख लेता है, भगवान यहां मृत्यु के रूप में युद्ध के समय में खड़े। तब अर्जुन कहता है कि मुझे तो आपका सौम्य रूप ही चाहिए जिसके साथ में व्यवहार कर सकता हूं। सौम्य रूप क्या है? सुंदर, आकर्षक। विराट रूप में कोई आकर्षक नहीं, भगवान सर्वाकर्षक। तो भगवान ने अपने चतुर्भुज दिखाया। चतुर्भुज विष्णु दिव्य रूप होता है, दिव्य रूप होता है, लेकिन इनके साथ व्यवहार में मर्यादित होता है, सारा कुछ व्यवहार नहीं कर सकते। विष्णु को हम वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में, मित्रता के भाव में बच नहीं सकते। उनकी तो शरणागति ही प्रेमी होती है और सेवा भाव में पूजन करनी होती है। विष्णु जी के साथ हम दूसरा कोई ऐसा संबंध नहीं बना सकते। तो जीव भगवान के साथ अपनी इच्छा वाला जो संबंध भक्ति में बनाता है उसके अनुसार भगवान के स्वरूप को भी पसंद करता है। तो अर्जुन के चतुर्भुज बताते हुए भी अर्जुन को कोई शांति नहीं, इसीलिए सौम्य बपु बपु मेरा शरीर सुंदरता आकर्षक भगवान ने वो स्वरूप द्विभुज पहले जैसे थे दो हाथ वाले ऐसा बताया। तो इसकी चर्चा हम करें। कल जन्माष्टमी है, भगवान का स्वरूप प्रकट होता है, कैसे प्रकट होते हैं वो कल बात करें, लेकिन ये स्वरूप के पीछे हमें ये द्विभुज स्वरूप क्यों उत्तम है, वो असली रूप क्यों कहलाता है, उसका यहां थोड़ा समझने की आवश्यकता है बनी रहती है। इसलिए ये 11वें अध्याय अर्जुन को सांत्वना देकर विश्वरूप में घबराहट हो रही है, अर्जुन को सांत्वना देकर भगवान कहते हैं मां ने व्यथित भाव मां चूर्ण भाव दृष्टवा रूपम घोरविंदक ममिंदक व्यपेद भी कृतमना पुनस्तम तदेव मे रूपम इदं पश्य। तुम मेरे ये भयानक रूप को देखकर अत्यंत व्यथित हुआ है और तो काफी मोह में फंस गया है, लेकिन वो अब समाप्त हो मेरे भक्त। तो सारी दुखों से, सारे दुखों से तो मुक्त हो जाए और तो शांत मन से तुझे जो पसंद है ऐसे मेरा रूप दर्शन कर। श्री प्रभुपाद तात्पर्य कहते हैं भगवत गीता की शुरुआत में अर्जुन अपने पूज्य पिता विष्णु तथा गुरु द्रोणाचार्य का वध करने के विषय में चिंतित था, लेकिन कृष्ण ने कहा था कि उसे भीष्म पितामह के शरीर को मारने में बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं, धर्म मानना ही पड़ेगा। जब कौरव की सभा में पुत्रों द्वारा द्रौपदी को निमस्त्रित करने का प्रयास किया जाता था, तब भीष्म और द्रोण दोनों कुछ भी बोले, उन्होंने देखा न देखा कर महापाप की कथा मालूम है। द्रौपदी के चीरहरण करते समय ये दोनों कुरुवृद्ध कुरु में सबसे बुढ़े द्रोणाचार्य और भीष्म, अरे उनको तो कुछ कहना था कि बंद कर, तो बड़े लोग जब बोलते हैं तो छोटे बच्चे यदि गलती करते हैं तो रुक जाते हैं, अमान्य बढ़ोती मरनी पड़ती। लेकिन इन दोनों ने कुछ नहीं कहा, द्रोणाचार्य और भीष्म दोनों ने कुछ नहीं कहा। इसीलिए उन्होंने अपने कर्तव्य निभाने के बजाय अपेक्षा की। सभी को अपना कर्तव्य होता है, जब कोई बूढ़ा बुजुर्ग होता है अपने परिवार में तो उसकी छत्र छाया में यानी कि उसकी अम्ब्रेला में हम सुरक्षित समझते हैं, घर के नीति नियम का पालन कर सकते हैं, क्योंकि बड़ों की ये जिम्मेदारी होती है, बच्चों में भी संस्कार है, इसलिए मर्यादा का पालन करना होता है। तो ये लोग भी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, अपना कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते हैं, उन्होंने द्रौपदी को की राज बचाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। इसीलिए इन दोनों का वध होना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने बताया अर्जुन कि बूढ़े होते उन्होंने धर्म की उपेक्षा की है, धर्म द्रौपदी की लाज रखने के लिए था और उपेक्षा की, इसीलिए दोनों का नाश होना ही चाहिए, ये भगवान का मंत्र है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप का दर्शन इसीलिए कराया कि उन लोगों उन्होंने जो अनैतिक कर्म किए नीतिवाद अनैतिक कर्म किए इसकी वजह से ही वो सब पहले बन ही चुके थे, जो नीति से नहीं जीता वो मर ही चुका सब। और वही विश्व रूप में भगवान ने अर्जुन को दर्शन कराया कि विश्व पिता मां इत्यादि सभी ये विराट रूप के मुख में प्रवेश करते हैं और उनके साथ असंख्य सैन्य भी भगवान के विकराल रूप में जाते थे, कोई भगवान के दांतों के बीच में चला जाता था, कोई ऐसा विकराल स्वरूप ये इसकी पूजा कभी नहीं होती, भगवान के ये विश्व रूप के कभी मंदिर नहीं होते, लेकिन भगवान ने ये विश्व रूप बताया अर्जुन ये समझाने के लिए जो अनैतिक कार्य जिन्होंने किया है उसका नाश हो ही चुका है पहले से, तो ये दर्शन करने के अर्जुन वो दृश्य अर्जुन को बताया था, क्योंकि भक्तजन हमेशा शांत होता है और भक्त लोग ऐसे घोर कर्म कभी कर नहीं सकते। विश्व रूप प्रकट करने का आशय यह स्पष्ट हुआ, जो भक्त होता है वो तो कभी ऐसे घोर कर्म नहीं कर सकते। अब अर्जुन को भगवान का चतुर्भुज भुज रूप दिखने की अभिलाषा हुई थी और कृष्ण ने उसका दर्शन भी कराया। भक्त को भगवान के विश्वरूप में कुछ रस नहीं होता क्योंकि उसमें भगवान के साथ प्रेम भाव का आदान प्रदान नहीं होता, विश्वरूप के साथ प्रेम भाव का आदान प्रदान नहीं होता। भक्त या तो अपने आदरयुक्त पूज्य भाव अर्पित करना चाहता है अथवा तो वो विभुज कृष्ण भगवान का दर्शन की इच्छा करता है। इससे वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के साथ प्रेम भक्ति का आदान प्रदान कर सके लेना देना। यहां भगवान राधा गुरु बिहार द्विभुज ये द्विभुज स्वरूप में भगवान के साथ हम अपना प्रेम व्यवहार अपने हृदय की भावना के आप ले कर सकते हैं, हृदय की भावनाओं की आप ले कर और उसके अनुसार उसकी पूजा होती है। हृदय की भावनाओं की आप ले कर इसमें हम कुछ भगवान को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भोग वस्तु नहीं मान सकते। जहां प्रेम के हैं आदान प्रदान तो चतुर्भुज विष्णु के साथ बहुत मर्यादा हो सकता है, लेकिन द्विभुज रूप में दो हाथों वाले रूप में भगवान के साथ पूर्ण रूप से हर एक प्रकार के भावों द्वारा हर एक जीव एक साथ साथ अपने प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। देखो अभी विभुज रूप बताते हैं संजय क्या कहे, ये कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन तो ये विष्णु रूप देखकर तो दुखी मत हो, चल तुम मैं तुझे ये चतुर्भुज बताता हूं और उसके बाद विभुज देख सकेगा। तो ये सौम्य रूप कहा, विश्वरूप सौम्य रूप नहीं बताया। अब संजय ये कह रहा है कि इत्य अर्जुन वासुदेव तत्वोक्त्वा स्वकर्म रूप दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि अर्जुन को इस तरह कहकर भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम हैं उन्होंने इनका सही चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया और बाद में अपना द्विभुज रूप प्रकट करके जो अर्जुन भयग्रस्त था भय शक्ति उसे उत्साहित किया मुक्त कर। भावार्थ में प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण जन वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, तब सर्वप्रथम वो चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए। कल आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान के विषय प्रकट, तो यहां ये बता देते हैं कि सर्वप्रथम देवकी और वसुदेव जब कंस के कारागार में थे तो उसके आठवें पुत्र के रूप में चतुर्भुज नारायण के रूप में आगे शाम न तो प्रसूति की है न कुछ, देवकी ने न तो डिलीवरी की न कुछ किया, भगवान सर्वप्रथम उसके सामने खड़े हो गए। लेकिन जब भगवान के माता तब उन्होंने सामान्य बालक के स्वरूप को धारण किया। इसी तरह कृष्ण भगवान जानते थे कि अर्जुन को चतुर्भुज के दर्शन करने में कोई रुचि नहीं है। अर्जुन को ही रुचि नहीं है चतुर्भुज का दर्शन कराने में क्या फायदा, इसीलिए वो अपना द्विभुज रूप बता। लेकिन अर्जुन ने ही ये चतुर्भुज रूप देखने की इच्छा की थी, इसीलिए बताया था। लेकिन बाद में वो द्विभुज रूप में प्रकट हो गया। सौम्य बहु शब्द महत्व का है, उसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। और वो जो रूप है वो सबसे सुंदर रूप की ढंग से पहचान जाता है। कृष्ण भगवान जब प्रकट थे तब सभी कोई उनके रूप से ही आकर्षित हुए थे, और कृष्ण ये ब्रह्मांड के संचालक होने के कारण उन्होंने अपने भक्त अर्जुन के भय को दूर किया था और उसे फिर से अपना सुंदर सौम्य रूप बताया था। ब्रह्म संहिता के पांचवे अध्याय के 31-32 श्लोक में ये कहा गया है कि प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन है ना, जो मनुष्य की आंखों में प्रेम रूपी अंजन डाला है वही कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन कर सकता है। द्विभुज प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन है ना संत सदैव हृदयेषु विलोके यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुणस्व गोविंद। ये भगवान के द्विभुज रूप की का परिचय बताते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि भगवान के भक्त चतुर्भुज रूप में ज्यादा रुचि नहीं रखते, विराट रूप में तो है ही नहीं, घबराहट होती, चतुर्भुज में बहुत मान मर्यादा आ रही है, लेकिन द्विभुज में अपने भावों द्वारा हम भगवान के साथ अपनी आंतरिक इच्छाओं का आदान प्रदान कर सकते, अपनी भावना। जब आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ वहां जो भावना मर्यादित रूप नहीं कर सकते, लेकिन यहां राधा गोविंद बिहार जब द्विभुज में इनके साथ मुक्त रूप से हम अपनी आंतरिक भावनाओं की आपने कर सकते हैं, जिसमें पांच मुख्य रस द्वारा कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के यहां तो एक ही भाव सेवक की शरणागति, यहां शरणागति है लेकिन भाव की आपने साक्ष्य रस में वात्सल्य रस में माधुर्य रस में भी हो सकती। तो द्विभुज रूप सबसे उत्तम माना जाता है शास्त्र। ऐसे नहीं कि हमारे जैसा मनुष्य जैसा दिखता, मनुष्य जैसा दिखता करता है लेकिन दिव्यता वाला। कृष्ण भगवान कृप मीन्स आधार वाचक नाम है और न आनंददायक वाचक नाम है। जो आधार और आनंद दोनों ही सर्वाकर्षक कहें, आकर्षण का मूल तत्व कृष्ण है। भगवान के स्वरूप में आकर्षण, भगवान के सौंदर्य आकर्षण, क्योंकि सौंदर्य भी एक ऐश्वर्य शक्ति का आकर्षण होता है, ज्ञान का आकर्षण होता है, धन का आकर्षण होता है, ख्याति का आकर्षण होता है, पर अवश्य तप यानी कोई राख का भी आकर्षण होता है। तो भगवान सर्वाकर्षक कृष्ण, ये उनका मुख्य नाम बनता है कृष्ण यानी कि भगवान, जो षडेश्वर पूर्ण भगवान के अवतार षडेश्वर पूर्ण शायद नहीं, मर्यादा लेकर आए हैं तो सारे ऐश्वर्य साथ साथ पर बताने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन कृष्ण भगवान ही षडेश्वर पूर्ण शास्त्र में शास्त्रकारों द्वारा आचार्य द्वारा प्रमाणित किया गया और उनका ये सौम्य बहु ये वृंदावन की लीला के आधार पर द्विभुज और इनका नामकरण भी राधा गोलोक विहार, गोलोक वृंदावन में विहार करने वाले राधा रानी के संत ललिता वंशाख, जहां सिर्फ प्रेम ही प्रधान होता है और वो भी प्रेम माधुर्य रस के परकीय भाव की पराकाष्ठा वाला रस, चैतन्य महाप्रभु जैसे संन्यास ने भी ऐसे ही रस को सर्वोच्च रस, उज्ज्वल रस बताया। तो हमने भगवान के रूप पर मैं मनुष्य जैसा आकर्षण नहीं होना चाहिए, स्त्री पुरुष एक दूसरे के रूप पर आकर्षित हो जाए, लेकिन वो रूप काम चला ये रूप रूप नहीं है, वो रूप का रहस्य तो लिक्विड ब्यूटी बताए थे उसके अनुसार, रूप के सारे इंग्रेडिएंट कुछ और रूप अपने शरीर, लेकिन भगवान का ये विशुद्ध सत्व सौम्य बहु का जो रूप है वो हड्डी चमड़ी पसली से नहीं बनता, उनका वकु विग्रह सच्चित आनंद से बना है और भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को ही तीन सच्चिदानंद गुण जब समाविष्ट करके रूप बना, वो रूप का ही आधार भगवान का मूल रूप बताया। हमारे शरीर में जो रूप इत्यादि है यदि पानी उड़ जाए तो रूप भी खत्म हो जाए, सिर्फ पानी उड़ जाए अपने रूप में, पता है अपने शरीर में पानी कितने प्रतिशत है, मोर देन अपने शरीर में पानी करीबन 80% 80% वाटर, यदि डायरिया हो गया तो हालत देखो रूप की साइड पर रह जाए, सिर्फ डायरिया हो गया रूप का ठिकाना नहीं, हमारा रूप चक्र। तो हमें कौन सी आंखों से रूप की किस ढंग से रूप प्रेमा चरित्र भक्त भक्ति की आंख को जाग और हृदय से ही देखते रहे। चमड़ी की आंखों से देखने की कोई आवश्यकता नहीं और ये देखना सदैव हमेशा के लिए होता। कल भगवान प्रकट होंगे उनके अनुसार कम से कम थोड़ी दिव्यता का तो विचार करना चाहिए। देखो ये कोई मां को एक बच्चा नहीं पैदा हुआ, भगवान पैदा होते कोई मामूली बच्चे की तरह पैदा नहीं होते। पहले चतुर्भुज नारायण के रूप में खड़े हो गए, देव की और वसुदेव को जानते थे, अरे भगवान आप तो वैसे ही आ गए, देखो हथियार लेकर हमें तो बच्चा चाहिए था, आपका मूल रूप कहां है। तब भगवान ने अपना मूल रूप द्विभुज वाला और बाल्य लीला करने के लिए बच्चे के भगवान कभी बुरे नहीं होते, हमेशा नवयौवन ही रहते। लेकिन बाल्य लीला भक्तों के हृदय की पुष्टि करने के लिए वात्सल्य भाव से कोई भगवान को भजना चाहता है तो बाल्य लीला के अलावा कैसे भज सकता। तो देवकी और वसुदेव वात्सल्य भाव से भगवान को भजते थे, इतनी तपस्या करने के बावजूद भी वात्सल्य भाव भगवान के प्रति लगाने के लिए भगवान के चतुर्भुज नारायण के रूप में खड़े हो जाते हैं, कैसे कर पाएंगे। जब बच्चे के रूप में भगवान आ गए फिर भी बच्चा अपने हाथ में नहीं रहता, वसुदेव का आदेश करते हैं चलो मुझे ले चलो यहां से। एक पापी कंस को मारना, लेकिन बाद में लीला तो करनी है, लेकिन ज्ञान जेल खाने में कैसे होता है। बेहतर है आप नंद महादेव के बदले का हम कंस को मजा चुका है। तो देखो अपने वात्सल्य भाव को भी साइड से रखकर यशोदा को दे रहे हैं, ऐसे माता भगवान की इच्छा पूर्ण करने के लिए भक्ति कर इनके हृदय संकल्प सदैव हृदयेषु लोके। भगवान प्रकट होते हैं फिर भी इनके हाथ में बच्चा नहीं है, भारी दिल से हां भगवान जा आप लीला करो सारी दुनिया को बताओ आपकी दीदी। तो वृंदावन की लीला और बाल्य लीला वात्सल्य भाव ने सारे ब्रजवासी उसको प्रवित कर, सारे ब्रज बाद में पौगंड लीला किशोर लीला इत्यादि उसे ज्यादा भगवान लीला करते हैं वृंदावन, क्योंकि भगवान का मूल स्वरूप वृंदावन में प्रेम की आंखों द्वारा ही देखा जाता है। प्रेम की आंख प्रेमांजल चरित भक्ति विनोद संत सदैव देश सदा हमेशा यम श्याम सुंदर अचिंत्य मनस्वरूपम गोविंद इतने तीन तीन प्रकार के रूप की यह चर्चा हो रही है। फिर भी हम भगवान की दिव्यता का थोड़ा विचार नहीं करते, अपनी आदत के अनुसार यदि हम भगवान को भी अपने में से एक मान लेते हैं बहुत नहीं कहना है क्या। इसलिए जन्माष्टमी के अवसर पर हमें भगवान की दिव्यता का परिचय कराने के लिए भगवान का कर्तव्य होता है और ये प्रकटीकरण हम भक्ति द्वारा समझ सकते हैं। इसलिए हमें भक्ति करने का बड़ा उपाय यह प्राप्त होता है। हर साल कम से कम एक दिन भगवान के जन्म मनाने के लिए भी हम यदि इकट्ठे होते हैं, सारे साल तो आते ही नहीं, एक दिन ऐसे कई लोग हैं कि जन्माष्टमी के दिन ही भगवान के मंदिर जाएंगे, तीर्थ जाएंगे, साल में एक बार नहीं। भगवान तो वैसे तो जन्म के भी है, अजन्मा के वो प्रकट होते हैं, तो माया से उनको जबरदस्ती से जन्म नहीं, हमारे जैसे हमें तो जबरदस्ती से जन्म लेना पड़ता है, भगवान को कोई जबरदस्ती नहीं। काफी फर्क अवश्य भगवद्गीता के इन श्लोकों को जरा याद करके हम भगवान के दिव्य स्वरूप की पहचान करने की कोशिश करें। मूल असमय द्विपुंज जो वृंदावन में ही कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं, वृंदावन के बाहर मथुरा द्वारका इत्यादि की लीला में वो कृष्ण के रूप में नहीं जाने जाते, वो वासुदेव वसुदेव के बेटे के रूप में जाने जाते। लेकिन वृंदावन का नंद नंदन गुरु बिहार इत्यादि नाम पाया जाता है, जहां प्रेम की आती है, अडान प्रदान बिना संकोच हो सकती। किसी को कोई प्रश्न है? यस,
भीष्म पितामह दुर्योधन के साथ मिलकर युद्ध किया। वैसे तो एक भक्त हमेशा भगवान के साथ में भगवान के पक्ष में होता है, भगवान भी भक्त के पक्ष में, तो क्यों हम भीष्म पितामह को हमेशा भक्त के रूप में देखते हैं?
विश्व पितामह भक्त थे, लेकिन इनका जो भाव जो था शौर्य भाव से भगवान की भक्ति चलते, भगवान को रक्षित जानते थे कि कृष्ण भगवान कौन थे, इनके आराध्य देव, इसलिए मरते समय उनको सामने बुलाकर उनका मूल जो चतुर्भुज रूप में उनकी आस्था थी, इसलिए मानते थे केशव आपका चतुर्भुज देव। भीष्म पितामह देवता यानी कि वसु, वो अपने मूल कर्तव्य स्थान पर जब जाएंगे भीष्म शरीर छोड़कर, तो भगवान के हमेशा भक्ति में यानी कि नारायण की भक्ति में वो मग्न रहे, उनके अनुसार वह काम करते रहे, उनका कर्तव्य। तो भीष्म पितामह ने इस बार जन्म लेकर ऐसी प्रतिज्ञा की कि भगवान को भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी, यानी ये शौर्य रस, वह ऐसे क्षत्रिय थे, लेकिन शौर्य रस गौण है, मुख्य नहीं। शौर्य रस गौण है, भगवान के विरुद्ध वो लड़ते नहीं, पांडवों के विरुद्ध लड़ते हैं, वो जानते थे कि हमेशा पांडवों की ही जय होती है, उनका तो विश्वास था कि जिसके पक्ष में जनार्दन होते हैं उनकी जय होती है, जयताम पांडव नाम यश्याम पक्षे जनार्दन, सही उनको पता है। और भगवान पर करने वाला है, लेकिन दुर्योधन के साथ रहकर दुर्योधन का नमक खा रहे हैं। इसलिए एक मानवीय कारण के लिए उनको इन दुष्टों का नाश करने के लिए ऐसे साथ दे, दुश्मनों के पक्ष में रहकर के दुश्मनों को साथ देकर दुश्मनों का नाश करने के लिए भगवान की इच्छा को, तो क्या भक्त नहीं सब गौ रस
महाराज। भगवान के सभी अवतारों में ये थे ऐश्वर्य अवतार, ये विराट रूप में क्यों नहीं?
विराट अवतार का विराट अवतार ये जो विराट पुरुष सारे भौतिक तत्वों की उपस्थिति बता और ये पुरुष की भाव सभी छोटे छोटे जीवात्मा की देता है, लेकिन ये विराट नहीं, ये विराट नहीं, मनो विराट नहीं। भगवान की शक्ति द्वारा भगवान सर्वप्रथम अपने आप को सारी सृष्टि में इस तरह व्याप्त करते हैं जो विराट है, ये विराट
यही बताए।
जब हमारे देश पर भगवान के दर्शन करने कभी तृप्ति अनुभवते नहीं तो बीच में ये पंखे दखल करते हैं। कितने प्रकार की आंख आप अपने प्रिय पात्र को कौन सी आंख से देखना चाहते हैं? ज्ञान की आंख से या प्रेम की आंख से? हाउ डू यू सी योर बिलवेड? You don't want to use knowledge. Bhakti में तो प्रेम की आंख की आवश्यकता है, ज्ञान की आंख ज्यादा जरूरी है। तो समझे बहु क्योंकि शांतिपल्ली मुनि का बेटा वापस लाना था, काफी करवट करनी थी और ना वो भी तो लीला थी, शायद गंगाचार्य के साथ ऐसी लीला करने का कोई उनका इरादा नहीं है। कौन कहता है भगवान के स्वतंत्र सुदामा की लीला भी नहीं होती। ऐसे प्रश्नों की आवश्यकता नहीं, भगवान ऐसे ही के जो है उसे तर्क से नहीं समझा सकते, क्योंकि अचिंत्य के लक्षण ही ये प्रकृति के परे होते हैं, भौतिक गुणों से पर, यानी हमारी जो नेशनैलिटी है सत्व रज और तमस से बनी उसे परे है। अचिंत्य स्तुति खलु भावा तमस करके योजे प्रकृति में पर अचिंत्य से लक्षण भक्ति प्रकृति की जो अलग होता है वो अचिंत्य का लक्षण है। इसीलिए अचिंत्य को अपने ये रिश्तेदारी त्रिगुणात्मक भाव से कभी नहीं देते समझना चाहिए। भगवान ने ऐसा किया है, अरे भगवान कौन होते और हम कौन है? हमारा प्रश्न यदि तीन गुण ही लगता रहता है कोई दिव्यता का परिचय नहीं, तो जब भगवान को हमेशा दिव्यता के दृष्टि से ही समझ सकते हैं तो उसे मानवीय कारणों द्वारा हम नहीं समझ सकते। इज बियॉन्ड ह्यूमैनिटी।
Thank you.
Thank you.